आज जो सब्जेक्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है लाइब्रेरी इन्फो एंड साइंस. और आपको बता दें, हम बात करेंगे लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन सर्विसेज फॉर द यूजर्स के बारे में. और जानकारी के लिए हमारे साथ बनी हुई हमारी एक्सपर्ट मिस मंजू चंगू जी. मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ.
थैंक यू.
जी
नमस्कार लर्नर्स. हमने पिछली बार जो अपना लेसन 12 है हमारा, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सर्विसेज फॉर यूजर्स, ये हमने आधा कंप्लीट किया था एंड वील बी कंटिन्यूइंग विद दिस लेसन. हम इसी को पूरा करेंगे, इसी पे चर्चा करेंगे और इसको कंप्लीट कर लेंगे आज. जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि लाइब्रेरी में बहुत तरह का मटेरियल होता है और हर तरह की इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है. लाइब्रेरी इज़ बेसिकली अ सर्विस इंस्टीट्यूशन जिसमें हमें सबसे इम्पोर्टेंस जो दी जाती है वो अपने यूज़र को दी जाती है. एंड तभी हमारे सभी इतना सारा स्टॉक में मटेरियल या इन्फॉर्मेशन गैदर करने का फ़ायदा है जब हम उसे सही तरीके से सही समय पे सही लोगों में डिसेमिनेट करें, दे दें, जिसे जो चाहिए उस समय वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए. तो उसमें हमने यही बताया था, जैसे पिछली बार हम जो भी बात कर रहे थे उसमें से सबसे ज़रूरी था कि सर्विसेज क्यों ज़रूरी हैं, इसकी नीड क्या है. अगर सर्विसेज नहीं होंगे तो किसी को पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती. इतना ज़्यादा अबेंडेंस है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उसमें से पर्टिकुलर चीज़ निकालना थोड़ा टफ होता है हर किसी के लिए. तो इसीलिए प्रोफेशनल्स होते हैं उस सबको. फिर इसमें ये भी बताया गया था कि कितनी तरह की जो नीड्स हैं, कितनी तरह की है. एक है कि करंट इन्फॉर्मेशन नीड है, चाहे मुझे आज क्या चाहिए, अभी कुछ करंट इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चाहिए, या एग्जॉस्टिव में हमें रिसर्च के में से रिलेटेड कुछ चाहिए होगा, तो वो इन्फॉर्मेशन के लिए एवरीडे इन्फॉर्मेशन नीड भी है, कैचिंग अप ऑफ इन्फॉर्मेशन नीड्स भी हैं. जो हम देखते हैं एवरीडे इन्फॉर्मेशन नीड में किस तरह की नीड्स होती हैं, वो ज़्यादातर होती है रेफरेंस सर्विसेज, रेडी रेफरेंस सर्विस, जिसे हम शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस भी कहते हैं. रेडी रेफरेंस सर्विस का मतलब यही हुआ कि आपने मुझसे सवाल पूछा, कोई सा भी सवाल पूछा, हाउ कैन आई प्रोनाउंस द वर्ड शेड्यूल, तो ये आपको नहीं आ रहा है, तो इसके लिए मैं क्या कहूँगी, मैं कहूँगी आप इस डिक्शनरी में चले जाएं. अगर आप लाइब्रेरी आए हैं तो आप तो समय बदल भी गया है, थोड़ा चेंजेस आ रहे हैं, अब ऑनलाइन ज़्यादा यूज़ हो रही हैं चीज़ें, बट अदरवाइज दीज ऑल दीज स्मॉल थिंग्स आई विल बी आंसरिंग योर क्वेरी लाइक दिस ओनली. अगर मुझे किसी के बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं कहूँगी जनरल इंसाइक्लोपीडिया में देखेंगे, या मैं खुद देख के आपको निकाल के दे दूँगी. ट्रेंड्स के बारे में है या प्लेसेस के बारे में, जैसे हम सब गूगल मैप बहुत यूज़ कर रहे हैं, तो उसका एक पर्टिकुलर है जियोग्राफिकल एरियाज़ के लिए क्या हम यूज़ कर रहे हैं. पहले तो हम इन सब चीज़ों को इंसाइक्लोपीडिया से देखते थे, या हम ज्योग्राफिकल रिसोर्सेज जो भी होते थे उनसे देखते थे. लाइक दीज आर द क्वेश्चंस विच वन इज़ गेटिंग एवरी डे, डे टू डे. देखा जाए तो स्कूल इन्फॉर्मेशन में छोटी छोटी चीज़ें रोज़ पूछी जाती हैं, रोज़ बच्चों को बताना पड़ता है, तो ये हम शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस कहते हैं इसे. और रेडी रेफरेंस सर्विसेज भी इन्हीं को कहते हैं, जहाँ कि हमें बहुत समय तक टाइम नहीं लगता ढूंढने में, कंपाइल करने में इन्फॉर्मेशन को. अगर कंपाइल करके देना है इन्फॉर्मेशन तो उसमें टाइम लगता है. मोस्टली जो देखा गया है, ज़्यादातर जो है स्कूल और कॉलेज की लाइब्रेरीज में है, 60% जो है क्वेश्चंस जो है वो रेडी रेफरेंस क्वेश्चंस ही हैं. इसी तरह के छोटे छोटे मिलते हैं आपको ज़्यादातर, मतलब स्टडी करके देखा गया है कि यही रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं इन्हीं को सबको पता, आपको लगेगा आपको पता है पर सभी को नहीं पता होता. जैसे अब हम कोविड के बारे में बात करते हैं, अभी भी आपको बार बार याद दिलाया गया है कि हाँ भाई हाथ धोना है, इसी तरह से ये इन्फॉर्मेशन भी मालूम होती है, बट पर्टिकुलर चीज़ कहाँ पर मिलेगी, कैसे मिलेगी, उसका आंसर क्वेरी का हमारे लाइब्रेरी में ही मिलता है. तो बाकी जो रिसर्च से रिलेटेड, एकेडमिक लाइब्रेरी से रिलेटेड काम होता है, वो 40-50% वो क्वेश्चंस भी होते हैं, जिसमें कि हमें आपको ईमेल मुझे आप भेज सकते हैं, कॉरेस्पॉन्ड कर सकते हैं मुझसे कि मुझे ये क्वेश्चन, इसका आंसर चाहिए, मुझे ये ढूंढ के दे दीजिए, ये रिसर्च दे दीजिए. तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, वी यूजुअली ट्राई टू फाइंड आउट डॉक्टर्स के लिए, इंजीनियर्स के लिए, जो उनकी भी अलग अलग लाइब्रेरीज़ हैं, वहाँ पर उनके पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को आज बोलना है कहीं पर, या किसी बीमारी के बारे में बात करना है, कुछ भी करना है, तो देयर वी ट्राई टू फाइंड आउट द इन्फॉर्मेशन एंड कंपाइल इट इनटू अ पेपर. फिर उसे अच्छे से पढ़ते हैं, प्रॉपरली उसे तैयार करते हैं, फिर देखते हैं मैच कर रहा है उनकी क्वेरी और हमारी जो रिप्लाई है वो आपस में मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सब हम उन चीज़ों को ध्यान दे करके देन वी गिव इट, हम चाहे वो पीरियोडिकल से निकालें, इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट से निकालें, जहाँ जहाँ से हम कोशिश करके हम वी ट्राई टू कंपाइल द इन्फॉर्मेशन एंड गिव इट टू द पर्टिकुलर पर्सन जिसे पर्टिकुलर टॉपिक पे जो भी चाहिए होता है, दैट इज़ हाउ वी डू इट. तो जो नेक्स्ट है ये लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विसेज का था कि हम कैसे R&D प्रोफेशनल लोगों को कैसे मदद करते हैं हम जब उनकी कोई भी क्वेरी आती है. फिर है रीडर एडवाइजरी सर्विसेज. रीडर एडवाइजरी सर्विसेज इसलिए भी बहुत ज़रूरी है, आप कहेंगे जब भी आप लाइब्रेरी जाएंगे अगर आपको यही नहीं पता होगा कि हम किस तरह की लाइब्रेरी मेंटेन कर रहे हैं, कौन सी स्कीम से हमारी क्लासिफिकेशंस हैं, किस तरह का हमारा सिस्टम है, आपको पैक कैसे दिखेगा, किस तरह से आप सर्च कर पाएंगे, तो तब तक ये डिफ़िकल्ट हो जाता है यूज़र्स के लिए कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन कैसे यूज़ करें, कैसे आपकी लाइब्रेरी को यूज़ करें. तो रीडर एडवाइजरी सर्विसेज में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या करते हैं हम, वी गिव रीडिंग गाइडेंस टू द यूज़र्स. एम ऑफ दिस इज़ टू मोटिवेट द लिटरेसी यूज़र्स टू यूज़ द लाइब्रेरी, इनकल्केट रीडिंग हैबिट. अगर आपको बहुत आसान लगेगा, आपको लगेगा कि मैडम अच्छे से समझा देती हैं और मुझे जाते ही फटाफट लाइब्रेरी में मटेरियल मिल जाता है, मेरा प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है, तो यू विल डेफिनेटली बिकम ए हैप्पी रीडर. आप ज़रूर आएंगे मेरे पास एंड यू विल ट्राई टू कम एंड फाइंड आउट थिंग्स, क्योंकि अगर मैंने आपको इतना आसान और सरल तरीके से समझा दिया है कि लाइब्रेरी में कहाँ पर क्या है और कैसे रखा हुआ है, और अगर कभी आपको दिक्कत हो रही है किसी चीज़ को होगी, तो उसके लिए हमने डायरेक्शंस बनाए हैं, FAQs रखे हुए हैं जिसमें आपको आंसर मिलता रहता है. तो दीज ऑल थिंग्स मैटर अलॉट इन रीडर एडवाइजरी सर्विस. ये हम अपनी जैसे कि दिस सर्विस जो है ये हेल्प करती है राइट बुक फॉर एजुकेशनल एंड रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए. सच सर्विसेज यूजुअली ऑफर्ड इन स्कूल्स एंड पब्लिक लाइब्रेरीज. स्कूल चिल्ड्रन ऑफन रिक्वायर दिस टाइप ऑफ सर्विसेज. This gives an, this has a positive attitude towards the library should be developed and how, what is the importance of the library and the resources for their lifelong learning. Public libraries में इसलिए क्योंकि वहाँ पर हर तरह का client आपके पास आता है, वो 1 to 5 या 1 to 10 वाले खाली बच्चे नहीं हैं, वहाँ हर किसी age group में आता है, तो उनकी queries अपने हिसाब से होती हैं, तो वो उनको लाइब्रेरी से एक्विंट करना, लाइब्रेरी की सर्विसेज के बारे में बताना, कहाँ उन्हें किस तरह से अपनी सर्विस को यूज़ करना है, तो इट इज़ क्वाइट हेल्पफुल फॉर द रीडर्स. फिर यूज़र ओरिएंटेशन. यूज़र ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है ये ज़्यादातर हम लोग एकेडमिक लाइब्रेरीज में होता है, ताकि यूज़र एजुकेशन जो है वो काफ़ी अच्छे से डिसेमिनेट हो जाए, यूज़र्स एकदम आपके जिसे कहते हैं ना, दे शुड बी अंडरस्टैंडिंग द स्टाइल ऑफ वर्क, किस तरह का काम आप करते हैं और किस तरह से आपकी लाइब्रेरी रखी गई है. पर्टिकुलरली एकेडमिक लाइब्रेरीज में जो है यूज़र इनिशिएशन करते हैं जो नए स्टूडेंट्स आते हैं. अब फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स निकल के तो फर्स्ट ईयर में फिर से एडमिशन शुरू हो जाता है, तो उनके लिए यूज़र ओरिएंटेशन बहुत ज़रूरी. या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 10 लोगों ने 15 लोगों ने फिर से ज्वाइन कर लिया, तो दे आर नॉट यूज टू ऑफ योर लाइब्रेरी, दे हैव नॉट सीन योर लाइब्रेरी, तो इन दैट केस वो आपको ये सब जानना बताना बहुत ज़रूरी रहता है, उनको एकदम से अवेयर करना, टू मेक दम लिटरेट अबाउट योर लाइब्रेरी थिंग्स, पोजिशंस, क्या क्या है आपके पास और किस तरह से आपने इन्हें रखा हुआ है. तो ये बहुत एक अच्छी फैसिलिटी है जो यूजुअली कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज करती हैं, पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में भी ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है इसका पार्ट, बिकॉज यूजुअली सब लोगों को नहीं पता होता कि आपकी लाइब्रेरी में क्या है, किस तरह की कैटलॉगिंग है, आप लेंडिंग कैसे करते हैं, बोरोइंग फैसिलिटी में आपको कितने टिकट मिलते हैं, मतलब इसमें सभी के सेम ही सवाल होते हैं, पर इन दैट केस पर जो नए लोग होते हैं उनको ये समझाना भी ज़रूरी होता है कि रेफरेंस सर्विसेज में हम आपको क्या देते हैं, रेफरेंस बुक्स हम इशू नहीं करते हैं, अगर ये बुक आपको लेके जाना है तो ये आप फ्राइडे को लेके जा सकते हैं, इससे आप मंडे को वापस करना पड़ेगा, बहुत सारी जो चीज़ें आपकी लाइब्रेरी में हो रही हैं और जो सर्विसेज आपकी लाइब्रेरी में हैं वो सब आप उन्हें बता रहे हैं. ये जो प्रोग्राम होता है यूज़र ऑफिस का, ये एक या तो लेक्चर भी बना सकते हैं आप, पढ़ा सकते हैं कि ये इस तरह से, नहीं तो आप क्या करते हैं एक वर्चुअल टूर भी बना लेते हैं. आपने एक वर्चुअली लाइब्रेरी की पूरी वीडियो बना ली, साथ में आपने अपना बता भी दिया कि ये है यहाँ पर इस नंबर से बुक्स, इस सब्जेक्ट की बुक्स हैं. या आप एक ब्रोशर भी बना सकते हैं, एक छोटा सा पैम्पलेट बना दिया है, ब्रोशर बना दिया है छोटा सा 2-3 पन्नों का, उसमें अपनी लाइब्रेरी का नाम, अपनी सर्विसेज और कितनी बुक्स हैं आपके पास, किस तरह से आप सर्कुलेशन करते हैं, चाहे आप फुली ऑटोमेटेड हैं या आप मैनुअली काम करते हैं, ये सब जो है आप अपने उस ब्रोशर में भी दे सकते हैं. तो वो भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इनकेस आप एक लेक्चर नहीं देना चाहते हैं या नहीं हो पाता है कभी कभी. या एक ऑडियो किट भी हो सकती है, आपने रिकॉर्ड कर लिया सब कुछ और अपने, अब तो हम व्हाट्सअप पे भी ग्रुप्स पे भेज देते हैं कि एक पूरी अच्छी सी एक ऑडियो किट बना ली, अपना पूरा अपनी इन्फॉर्मेशंस को गैदर कर लिया, बता दिया, बना दिया और सुनने के लिए भेज दिया किसी, जो जो आपके यूज़र से उन्हें बता दिया. तो ये हमारी हो गया यूज़र ओरिएंटेशन में हम क्या कहते हैं. अब इसके बाद है नीड फॉर द, ये सब जो था अभी तक एसेंशियल सर्विसेज में ही आता है कि ये सभी को हर चीज़ ये वाली ज़रूरी है और हर लाइब्रेरी करती है, वो चाहे स्कूल लाइब्रेरी है, कॉलेज लाइब्रेरी है या पब्लिक लाइब्रेरी है, सभी लाइब्रेरीज वो काम करते हैं. ये अब जो नेक्स्ट है इसमें जो क्वेश्चंस हैं, आपके पास एसेंशियल सर्विसेज क्या है, रेफरेंस सर्विसेज क्या होती हैं और रीडर एडवाइजरी सर्विसेज क्या होती है और क्यों दी गई है, यही जो हमने अभी बात की कि रीडर एडवाइजरी सर्विस क्यों ज़रूरी है, ताकि आप लोगों का भी समय बचे और हमारे रीडर्स भी जो है उनको भी इंटरेस्ट बना रहे लाइब्रेरी में आने का. दे शुड फील कंफर्टेबल वाइल विजिटिंग यू एंड गेटिंग आंसर्स टू देयर क्वेश्चंस. जो वो अपना वो टाइम नहीं खर्च करना चाहते वो उसमें उनको सुविधा मिल जाए इस तरह की. तो आप जो नेक्स्ट पार्ट पे जो है हमारा वो है डिज़ायरेबल. डिज़ायरेबल सर्विसेज मतलब है वो सर्विसेज जहाँ पर हमें पहले आपके इन्फॉर्मेशन मांगने से पहले ही मुझे वो तैयार करके रखनी पड़ेगी वो इन्फॉर्मेशन. वो मुझे जैसे कि हम करंट अवेयरनेस सर्विसेज कहते हैं या सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन कहते हैं या एब्स्ट्रैक्टिंग कहते हैं, इंडेक्सिंग कहते हैं, ये सारी सर्विसेज वैसी सर्विसेज हैं. देखा गया है कि 20th सेंचुरी में वर्ल्ड वॉर के बाद काफ़ी सारा मटेरियल इतना ज़्यादा ट्रिमेंडस छप गया था वर्ल्ड ओवर में, जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रही थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, लोगों को ढूंढने की, देखने की, हर पर्टिकुलर चीज़ को बताने की. अगर हमें एक बिब्लियोग्राफी भी बनानी है तो उसके लिए जब तक लाइब्रेरी ऑर्गेनाइज नहीं होगी, एक टॉपिक पे बहुत सारा सर्च करना, अब तो हमारे पास वो सारा इंटरनेट के थ्रू हमें कंप्यूटर से सब कुछ पता चल जाता है, पहले इतना नहीं होता था. तो एक फिज़िकल आपको बनाना पड़ता था कि आपने जिस सब्जेक्ट में जितनी किताबें हैं आपके पास उसकी बिब्लियोग्राफी बना के देना, या पर्टिकुलर टॉपिक हमें कहाँ कहाँ से मिल रहा है, किस किस बुक से मिल रहा है, ये सब लाइब्रेरीज का ही काम बताया गया डिजायरेबल सर्विसेज में इसे कहा गया. गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड रिसर्च पर्टिकुलर एरियाज ऑफ साइंस, एंड उस समय गवर्नमेंट ने काफ़ी सारा पैसा किए खर्च किया डिफेंस के लिए, न्यूक्लियर साइंसेस के लिए, जिसकी वजह से अबेंडेंस ग्रोथ हो गई, बाहर से लोग बुलाए गए, इधर उधर से लोग गए, बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत रिसर्च किया. तो इसलिए बहुत ये सब होने का मतलब क्या हुआ कि रिसर्च रिपोर्ट्स बहुत सारी आई, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स हो गई, डिजर्टेशंस बहुत सारी हो गई, थीसिस आ गई, पेटेंट्स हो गए, बहुत सारा जो पब्लिश हुआ, पब्लिकेशन इतनी ज़्यादा अबेंडेंस में होती गई. तो यू नीडिड समवन टू कैटर दम, उनको सही तरीके से बताना, उसकी इन्फॉर्मेशन को पर्टिकुलर लोगों तक पहुंचाने के लिए ये डिज़ायरेबल सर्विसेज हमने इसे डिस्कवर किया लाइब्रेरीज में कि ये सर्विसेज होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके लिए हम एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, सिलेक्ट करके उनका पर्टिकुलर एक टॉपिक पे ढूंढ के उन तक पहुंचा सकते हैं. इसमें सारी सर्विसेज जैसे मैंने बताया आपको, करंट अवेयरनेस सर्विसेज आपको मालूम ही होगा, जो भी हमारे पास करंट आया आज की डेट में जो चीज़ें मिली, अगर मेरी लाइब्रेरी बहुत बड़ी है तो मैं उसे एक हफ्ते में भी निकाल सकती हूँ कि एक हफ्ते में हमारे पास इतने इतने जर्नल्स आए हैं, ये बताओ, क्योंकि अब तो सॉफ्टवेयर सारा कुछ करके देते हैं। तो कंडेंसेशन सर्विसेज भी हैं इसमें। कंडेंसेशन सर्विस में ये है कि एक बड़े से टॉपिक को मैं पढ़ूंगी और मुझे लैंग्वेज पर अच्छा होल्ड होना चाहिए और मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखने की मेरे में होनी चाहिए एबिलिटी। मैंने इससे अगर मैंने कम से कम 20-30 पेजेस को अगर मैं उसे एक पन्ना बनाती हूँ आपके लिए, तो जब आप साइंटिस्ट है जो R&D में है, जो कोई भी है, जब वो एक ही पन्ना पढ़ के उसे पता चल जाता है ये टॉपिक मुझे लेना चाहिए या नहीं, ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए सही है या नहीं है, ये वाला आर्टिकल मैं पढ़ूँ कि नहीं पढ़ूँ, तो उसका काम मैंने आधा कर लिया बिकॉज आई रेड इट थॉरोली। उसको मैंने पढ़ के कंडेंस कर दिया, छोटा बना दिया और उन तक वो पहुंचा दिया। ये काफ़ी काम बढ़ गया लाइब्रेरीज के लिए उस समय से। फिर इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हो ये होगी कि आपको फोटोकॉपी भी चाहिए होगा, तो यूजुअली लाइब्रेरीज में फोटोकॉपी मशीन भी रखा गया। पहले अब तो फ़ोन से फटाफट पिक खींच लेते हैं हम लोग, तो फोटो ये रेप्रोग्राफी का बहुत इम्पॉर्टेंट था कि एक फोटोकॉपियर मशीन होना ज़रूरी है। और उसके अलावा डॉक्यूमेंट डिलीवरी भी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर हूँ और आप कहीं और किसी और स्टेट में हैं और आपको पता चल रहा है हाँ मेरी लाइब्रेरी में ये है, मैं आप तक कैसे पहुँचाऊँगी, तो एक डॉक्यूमेंट को डिलीवर भी किया जाता है बाय पोस्ट, उससे भेजते हैं या स्पीड पोस्ट से भेजें या कैसे भी करके भेजें, बहुत सारे मीन्स हैं जिसके थ्रू हम भेजते हैं, वो भी सारी जो थी सर्विसेज में इंक्लूड किया गया। या आपने मुझे जो टॉपिक दिया है तो मुझे ये पता है ये मेरी लाइब्रेरी में नहीं हो सकता है, ये मेरे किसी और लाइब्रेरी में है, ये मेडिकल से रिलेटेड है तो ये मेडिकल लाइब्रेरी में मुझे पक्का मिलेगा, तो मैं आपको रेफ़र भी कर सकती हूँ। मैं वहाँ के लाइब्रेरियन से बात करके मैं बताऊँगी कि मेरा ये स्टूडेंट है या मेरा ये रिसर्चर है, उसे इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो डेफिनेटली सभी लोग आपस में मदद करते हैं। आप काफ़ी नेटवर्किंग भी हो गया है, मतलब जिसमें हम इंटरलाइब्रेरी लोन से बुक्स लेते हैं, ये सब करते हैं, तो यही है जो हमारे डिज़ायरेबल सर्विसेज में आता है। इसके अलावा हमारे पास जो सही से हम आपको पढ़ाएंगे बताएंगे, आपको ये लेसन 12 में कंप्लीट करने जा रही हूँ, इसमें हम आपको डिज़ायरेबल सर्विसेज में करंट अवेयरनेस सर्विसेज, कंडेंसेशन सर्विसेज, लिटरेचर सर्च एंड कंपाइलेशन और सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी, रेप्रोग्राफिक सर्विसेज, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विसेज, ट्रांसलेशन सर्विसेज, रेफरल सर्विसेज, यूज़र ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड सर्विसेज, ये सब जो है हमारे डिज़ायरेबल सर्विसेज में आते हैं। जैसे मैंने अभी छोटा छोटा आपको बता ही दिया कि करंट अवेयरनेस सर्विसेज क्या है। करंट अवेयरनेस सर्विसेज वही है जो हमारे पास नए जर्नल्स, बुक्स, मैगजीन्स जो भी आता है उसे हम फटाफट देखते हैं, स्कैन करते हैं, देखते हैं कोई आर्टिकल ऐसा तो नहीं है जो हमें ज़रूरत हो या किसी को चाहिए हो, तो उसको हम कंपाइल कर लेते हैं, वो लिस्ट हम फटाफट ईमेल कर देते हैं सबको। उसमें क्या क्या आता है, एक्सेशन लिस्ट भी आती है। अगर मेरे इस वीक में मैंने 50 किताबें खरीदी हैं या 20 किताबें खरीदी, मैं उसकी एक एक्सेशन लिस्ट भी डाउनलोड करके भेज देती हूँ। या हम ये भी अनाउंस कर देते हैं कि हमारे जर्नल्स में क्या आया है, नया क्या है, कौन से टाइटल्स नए हैं न्यू सर्विस में। सेलेक्टिव डिसेमिनेशन में वही है, पर्टिकुलर टॉपिक में आपने किसी ने कुछ मांगा है तो वो बनाया जाता है। न्यूज़पेपर क्लिपिंग सर्विसेज, जैसे हम NIS में न्यूज़पेपर क्लिपिंग सर्विसेज में हम NIS की अगर भी कोई भी न्यूज़ होती है उसे कर लेते हैं, और इसके अलावा हम एजुकेशन से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती है उसे हम क्लिपिंग देते हैं, हार्ड कॉपी भी करते हैं, सॉफ्ट कॉपी में भी दे देते हैं। तो ज़्यादातर अभी सॉफ्ट कॉपीज में ही होता है, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स भी आप न्यूज़पेपर को ख़रीद के वहाँ से आप उसका जो मेन आपको वहाँ से को जो भी टॉपिक आपके रिलेटेड होगा वो आप वहाँ से कट पेस्ट करके यू कैन सेंड इट थ्रू ईमेल आल्सो। कंडेंसेशन सर्विसेज में, दिस टाइप ऑफ सर्विसेज डॉक्यूमेंट्स आर कंडेंस्ड और समराइज, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें हम लोग वही करते हैं, डॉक्यूमेंट को छोटा बना देते हैं ताकि समराइज्ड आपको 100 पन्ने का डॉक्यूमेंट अगर 10 में मिल गया तो बहुत फ़र्क पड़ता, 5 में कर दिया मैंने तो इट बी गुड। और मेन ये है इसमें कि जो मेन चीज़ है, जो जिस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन है, वो मुझे भूलना नहीं है, उसे मुझे छोड़ना नहीं है। जिस वजह से आप इस डॉक्यूमेंट को पढ़ना चाहते हो, दैट आई हैव टू गो थ्रू एंड अंडरस्टैंड इट। लाइक हम लोग जब क्लासिफिकेशन भी कर रहे होते हैं, उस समय भी हमें टाइटल को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि ये टाइटल किस सब्जेक्ट में जा रहा है, जा रहा है तो हमारी लाइब्रेरी में पर्टिकुलर किस तरह से कहां पर रखा जाएगा। ये सब आपका अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उससे आप गैदर करते हैं, ये सब एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। आपको डॉक्यूमेंट को पढ़ना है, उसको कंडेंस करना, छोटा बनाना है, और आपने जिसे भी देना है बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट बना के देना होता है। इससे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपकी डिसेमिनेट हो जाती है, और जिनको ज़रूरत होती है इस इन्फॉर्मेशन की, उनका बहुत सारा समय बच जाता है। इसमें कंडेंसेशन सर्विसेज में एब्स्ट्रैक्टिंग और डाइजेस्ट सर्विसेज आ जाती हैं। छोटा डाया वो कर लेते हैं हम लोग, एब्स्ट्रैक्ट बना लेते हैं एंड वी शेयर इट विद द पीपल जिसे ये चाहिए होगा। फिर है लिटरेचर सर्च एंड कंपाइलेशन ऑफ ए सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी। अब हम एक टॉपिक मिला हुआ हमें, हमें उस पर लिटरेचर सर्च करना है कि हमें कहाँ कहाँ इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मेरी लाइब्रेरी में क्या मिलेगा, मेरे लाइब्रेरी में क्या क्या है। फिर हम पूरा लिस्ट जब बनाते हैं एक टॉपिक के ऊपर, हम पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं, उसको हम फिर सीरियली लिखते हैं। It's published information on a subject conducted systematically using bibliographical tools, locating in such existential material on a topic possible. लिटरेचर सर्च में सभी को पता है हम लोग जिस टॉपिक को भी ढूंढते हैं उसका टाइटल, उसका कहाँ से मिला है हमें इन्फॉर्मेशन, पेजिंग कहाँ से हुई है, उसका ऑथर क्या था और लिखा किसने था, ये सब उसमें सब सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग गैदर कर लेते हैं। इन सारी इन्फॉर्मेशन को फिर हम अल्फ़ाबेटिकली लगा लेते हैं, और एक पर्टिकुलर टॉपिक भी आपको लिटरेचर, जैसे जब रिसर्च करते हैं लोग तो एक लिटरेचर सर्च बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसमें सभी लोग अपने टॉपिक के बारे में पहले पढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ छपा है, क्या क्या काम हुआ है इस पे आज तक। तो इसी तरह से लाइब्रेरीज़ भी हेल्प करती हैं इस तरह के काम करने में। अगर आपके पास कोई टॉपिक है, यू विल ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या क्या छपा है इसमें, और उसको आप एक तरीके से कंपाइल करके वहाँ तक पहुँचाएंगे जिनको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। एकदम कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, बहुत शॉर्ट में और अच्छे से बनाई गई होनी चाहिए, और इट शुड सूट थ्रू द पर्सन जिसने पर्टिकुलर टॉपिक पे काम करना है, उसके लिए ये फ़ायदेमंद होना चाहिए। मतलब उसको समझ आ जाए, दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट लिटरेचर सर्च। रेप्रोग्राफिक सर्विसेज में आप क्या करेंगे, सेम डॉक्यूमेंट जो आपके पास है, अब तो हम मेल कर देते हैं 10-20-50 लोगों को, वहाँ से निकल जाता है। तो पहले ये सब क्या होता था, हम आर्टिकल्स, बुक्स, इन सब के जर्नल्स में से जो भी हमारे पास आर्टिकल होते हैं अच्छे, अभी भी ये करते हैं हम, वी टेक आउट फोटोकॉपी, फोटोग्राफी, माइक्रोफिल्म किसी तरह से, फिर अगर जब हमें इन सब को संभाल के रखना आगे के लिए रखना है तो फिर माइक्रोफिल्मिंग करते हैं। इसे बहुत छोटा बना के कम उसे एकदम अर्काइव करके रख देते थे ताकि आगे हमें काम आएगा। अब तो नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, तो रेप्रोग्राफी में अगर आपके पास एक भी आर्टिकल है तो ये आप जितने भी हज़ारों लोगों को भी भेज सकते हो। अब इसमें हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है फोटोकॉपी या किसी चीज़ की, या अब हमें माइक्रोफिल्मिंग भी नहीं करनी पड़ती है। इट इज़ स्टोर्ड इन डिजिटाइज फॉर्म में, आपके सर्वर है या आपका जैसे भी आप स्टोर कर रहे हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को, आप वहाँ पर उसे रख सकते हैं, या आपका जो भी सॉफ्टवेयर है उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रख देते हैं। जो आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स से पुराने हैं उन्हें हम स्कैन भी कर लेते हैं, स्कैन करके भी उन्हें सीरीज़ बना लेते हैं, सीरीज़ बना के उस इन्फॉर्मेशन को हम स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये रेप्रोग्राफिक सर्विसेज हुआ। डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस में, डॉक्यूमेंट डिलीवरी में ये देखा जाए तो सारी लाइब्रेरीज़ का ये काम नहीं है, ये यूजुअली ज़्यादातर बड़ी लाइब्रेरीज़ करती हैं, जहाँ से भी आपको आर्टिकल्स मिलते हैं और बुक्स मिलती हैं उनको दूसरे लाइब्रेरी तक पहुंचाना और दूसरे लोगों को शेयर करना वो आर्टिकल को, डॉक्यूमेंट डिलीवरी इसी कहते हैं। अभी तो हमें फिज़िकली ये भी पहुंचाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पहले अगर हमें ज़रूरत होती तो निस्केयर है जो कि आपका ये काम कर देते हैं, आपने उन्हें पूछा, अगर आपको लगा उनकी वेबसाइट पर गए, आपको लगा ये आर्टिकल उनके पास है तो वो पहुँचाते हैं आर्टिकल, बट यू हैव टू पे फॉर दैट। नाउ देर इज़ ई मेल एंड ऑल दैट, इसलिए ज़रूरत नहीं। ट्रांसलेशन सर्विसेज भी लाइब्रेरीज का काम है। ट्रांसलेशन में यूजुअली जो देखा जाए, सारी लाइब्रेरीज में ट्रांसलेशन हो नहीं सकती है, पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे लैंग्वेज में होते हैं, इसलिए उससे हम क्या करते हैं, उस समय लाइब्रेरीज का मेन काम जो है अपने ट्रांसलेटर्स की लिस्ट बना के रखना। कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो, या पर्टिकुलर लोग कोई काम कर रहे हैं, उन सब लोगों का नाम अपने पास रखना, सो दैट वी वेन एवर यू नीड एनी काइंड ऑफ ट्रांसलेशन। अब बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं दुनिया में, तो उस तरह की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना, एक डेटाबेस बनाना लाइब्रेरीज का काम है, सो दैट आप जब ज़रूरत हो तो आप उसे रेफ़र कर सकते हैं कि निस्केयर में है आपका हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी हो जाए, या यहाँ पर जर्मन में ट्रांसलेशन होती है। यहाँ पर ये सब इन्फॉर्मेशन जो है अच्छी बड़ी लाइब्रेरीज को करना पड़ता है और रखना पड़ता है अपने पास। अभी तक जो हमने बात की उसमें हम ट्रांसलेशन सर्विसेज तक बात की हमने, अब इसके बाद हम रेफरल सर्विसेज बताएंगे आपको। रेफरल सर्विसेज मैंने पहले भी बताया कि जब आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन पूछने के लिए आते हैं, अगर आपके पास नहीं है वो इन्फॉर्मेशन, तो व्हाट यू ट्राई टू डू, यू ऑलवेज ट्राई टू रेफर देम टू सम अदर लाइब्रेरी। अगर आपके पास पर्टिकुलर पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर आपको यू आर अवेयर दैट दिस कैन बी अवेलेबल इन दिस एरिया, ये आपके लाइब्रेरी में नहीं मिल सकता है, तो आप इसे रेफर करते हैं। यू टॉक टू द पर्सन, वहाँ जो इंचार्ज होगा आप उनसे बात करेंगे कि हमारे स्टूडेंट की ये ज़रूरत है, तो आप उन्हें ये वाली इन्फॉर्मेशन वहाँ से दिलवा देते हैं। वो लाइब्रेरी टू लाइब्रेरी भी होता है। देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स विच आर चेंजिंग ना, वो हम पर्टिकुलर किसी की वेबसाइट पर जा करके भी देख लेते हैं अब कि ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल सकती नहीं सकती। अगर डाउनलोडेबल नहीं होगी, अगर उनका फ्री एक्सेस नहीं होगा, तो वो हमें फिर थ्रू अपने लाइब्रेरियन ही जाना पड़ेगा। दैट विल बी काइंड ऑफ रेफरल सर्विसेज। यूज़र ट्रेनिंग में आपको बताया ही है मैंने कि यूजुअली लाइब्रेरियंस जो है ट्रेनिंग दे देते हैं अपने यूज़र्स को, कैसे आप लाइब्रेरी को, कैसे हमारी लाइब्रेरी में किस तरह की क्लासिफिकेशन है, किस तरह से हमारा सेटअप है, कैसे कैसे कर रखा है हमने, और क्या इन्फॉर्मेशन सर्विसेज आपके लिए अवेलेबल है हमारी लाइब्रेरी से, वो हम अपनी ट्रेनिंग में बताते हैं। उसे मैंने बताया, या ऑडियो भी हो सकती है, वीडियो ट्रेनिंग भी हो सकती है, एक वर्चुअल टूर भी हो सकता है, या आप एक रिकॉर्डिंग करके भी अपने यूज़र्स को बता सकते हैं, नहीं तो आप एक लेक्चर के फॉर्म में भी बता सकते हैं अगर काफ़ी स्टूडेंट्स हैं तो, इट कैन बी डन लाइक दैट ऑल्सो। फिर इसी सर्विसेज में जो है IT रिलेटेड सर्विसेज में, IT रिलेटेड में वी ऑल नो कि ओपैक होता है, एक वेब ओपैक होता है आपका लाइब्रेरी की, आपकी वेबसाइट होती है, वर्चुअल रेफरेंस सर्विसेज होती है, कंप्यूटराइज सर्कुलेशन सर्विसेज है, एक्सेस टू ई पब्लिकेशंस है, ये सारी IT रिलेटेड सर्विसेज आती है जिनके पास आपका लाइब्रेरी जो भी ऑटोमेटेड लाइब्रेरी है उन सब में ये सब सर्विसेज मिल सकती हैं हमें। वेब ओपैक होगा जो आप खुल के देख सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट का उनकी वेबसाइट पे, हमारी लाइब्रेरी की वेबसाइट होती है वो आप देख सकते हैं। वर्चुअल रेफरेंस सर्विसेज क्या क्या हैं, कहाँ से हम वर्चुअली देख सकते हैं बुक्स को, वो भी कभी कभी कनेक्टेड होती हैं। कंप्यूटराइज्ड सर्कुलेशन में यही है कि हम लोग सर्कुलेट जो करते हैं किताबें जो इशू रिटर्न करते हैं वो सब हम थ्रू कंप्यूटर से ही करते हैं, थ्रू इंटरनेट ही करते हैं। ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग में तो बताया गया है कि ये वैसा कैटलॉग है जो 24/7 आपको एक्सेस करता है। आपके पास सिर्फ एक इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए तो आप वेब ओपैक कर सकते हैं, 24 घंटे आपको पता चल जाता है कि किसकी लाइब्रेरी में क्या अवेलेबल है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं उनका खाली डेटाबेस ही दिखता है, हमारी लाइब्रेरी का तो अभी तक खाली डेटाबेस दिखता है। बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जहाँ पर बहुत सारी बुक्स जो हैं वो आपको फ्री में भी खुल के दिखती हैं। देर हर किताब की एक उम्र होती है, और जब एक 50 ईयर्स का उसका हो जाता है उसके बाद वो फ्री एक्सेस हो जाती है, तो आपको काफ़ी सारी बुक्स जो हैं फ्री एक्सेसिबल भी मिलती हैं। तो ये जो ओपैक है, ओपन ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, इसमें हमें हर लाइब्रेरी की अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो डेटाबेस के थ्रू हमें पता चल जाती है। तो इसके लिए आपको उनको कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या आप अपने कंप्यूटर पर बैठ के ही कर सकते हैं। ऐसे ही फिर लाइब्रेरी वेबसाइट का भी सेम यही है कि आप लाइब्रेरी की जो वेबसाइट है उस पर उसको आप कभी भी इंटरनेट के थ्रू आप उसको विज़िट कर सकते हैं, पर्सनली आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपका नाम क्या इशू है, क्या रिटर्न है, ये सब आपको उसी ओपैक्स के थ्रू ही दिखेगा। आपको अपनी आईडी डालनी होगी और अपनी आईडी से आपको पता चल जाएगा। वर्चुअल रेफरेंस सर्विसेज में हम लोग एफएक्यूज़ का ध्यान रखते हैं, जो मेनली आपको अगर किसी तरह के क्वेश्चंस पूछने होंगे जो बार बार आप पूछेंगे, तो उसमें एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस का बनाया जाता है, उसमें एक आंसर दे देते हैं हम। तो यू कैन गो टू दैट वेबसाइट, चेक इट। तो आपको मेन मेन जो क्वेश्चन चाहिए होगा, जैसे अब आपको हमारे NIS के बारे में, एडमिशन के बारे में पता चलना होगा, कब कब एडमिशन होता है और क्या फ़ी है और एग्ज़ाम कब होता है, तो इस तरह के जो रोज़ रूटीन के जो है, रोज़मर्रा के क्वेश्चंस हैं, वो FAQs में आ जाते हैं, वो हर कोई अपनी वेबसाइट पे डाल देता है। तो यू कैन गो थ्रू इट अनलेस एंड अंटिल यू हैव समथिंग वेरी पर्टिकुलर विच यू कैन मेल सेंड। उसमें ऑप्शन आ भी जाता है कि आप मेल करें अगर आपके पास किसी सवाल का जवाब नहीं मिला है। और सर्कुलेशन सर्विसेज में हम लोग बिना कार्ड के, आपको एक सिंगल कार्ड यूज़ होता है जिसमें, जिसे हम मेंबरशिप कार्ड कहते हैं, उसमें एक यूनिक कार्ड नंबर हो जाता है, उसको कंप्यूटर अपने आप पिक कर लेते हैं, आपके नाम से कौन सा नंबर से आपको एक कार्ड मिलेगा, उसके आपके नाम से उसी से किताबें इशू होगी। तो उस केस में आपको 4-5 इशू टिकट्स नहीं लेके जाना पड़ता है, या आपको टिकट्स कैरी करके लाइब्रेरी नहीं आना पड़ता है, तो वो ऑनलाइन भी आप पूछ सकते हैं, रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि मुझे ये किताब चाहिए, है क्या अवेलेबल है, यू कैन फर्स्ट चेक then you can take your book, that is a computerized circulation service. उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप खुद भी देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। आपको शाम को देखने का मन करे कि मेरे नाम से क्या किताबें हैं, मुझे ये अब ख़त्म हो गया, आई नीड समथिंग एल्स, तो दिस ऑल यू कैन डू इट थ्रू दैट। एक्सेस टू ई पब्लिकेशंस है, उसमें आपको पहले तो CD रोम और इस सब से होता था, पर अब तो सभी के पास ई जर्नल्स, ई बुक्स, सब कुछ, आर्टिकल्स, एनुअल रिपोर्ट्स, रिसर्च रिपोर्ट्स, ये सब उनकी वेबसाइट पे रहता है। यू कैन एक्सेस इट थ्रू द ई पब्लिकेशन सेक्शन, जहाँ जिस जिसका जो भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रिंट आउट, जो भी काम हुआ होता है, तो वो सब हम लोग अपनी वेबसाइट पे डालते रहते हैं। अब जो है, हम अभी तक जो है, हम कह रहे हैं इन्यूमरेट अदर डिज़ायरेबल सर्विसेज ऑफर्ड बाय द लाइब्रेरीज, कौन सी सर्विसेज हैं जो डिज़ायरेबल सर्विसेज में, ये सारी सर्विसेज जो मैंने पढ़ाई आपको, ये सारी डिज़ायरेबल सर्विस में है। दीज सर्विसेज आर लाइक, इट्स नॉट वन लाइन में आंसर नहीं मिलेगा आपको, इन सब पे काम करना पड़ता है और आपको एंटिसिपेट भी करना पड़ता है कि हो सकता है मेरे लाइब्रेरी में इस तरह का यूज़र आ सकता है और इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, या अब ये वाला दिन आने वाला है गांधी जयंती, हो सकता है गांधी जी के ऊपर बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तो आप कंपाइल करना शुरू कर देते हैं, या कोई एड्स डे आ रहा है, कोई भी डे आ रहा है, देर आर मेनी डेज लाइक देर पीपल विल बी गोइंग फॉर लेक्चरिंग ऑन दिस, इसमें चर्चाएं होंगी, बातें होंगी या लेक्चर करेंगे लोग, तो आप अपने हिसाब से उस दिन के लिए भी तैयारी करके रख सकते हैं, जिसे आप कहते हैं कि वो एंटिसिपेट कर रहे हैं आप, आपको पता है कैलेंडर के हिसाब से ये सब हो सकता है, तो देन यू कीप योरसेल्फ रेडी। What factors led to the provision of IT-related services? Let the services offered under this. ये जो services मैंने आपको बताया, e-publications में है, e-journals, magazines, ये सब IT में आता है, आपका circulation section, circulation का जो काम है सारा IT से related ही है, या OPAC है, web OPAC है, ये सब चीज़ें जो हैं IT से related ही आती हैं। इसके बाद जो हम last इसका chapter का part है, वो है हमारा libraries, जो एकेडमिक लाइब्रेरीज किस तरह की सर्विस देती हैं आपको, पब्लिक लाइब्रेरी किस तरह की सर्विस देती है आपको, और स्पेशल लाइब्रेरीज किस तरह की सर्विसेज देती हैं। अब स्कूल लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरीज में स्कूल लाइब्रेरीज जो हैं, वहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं कई बार फर्स्ट टाइम आए हुए होते हैं, तो उनको लाइब्रेरी के बारे में बताना और समझाना है कि किस तरह की लाइब्रेरी है हमारे पास, किस तरह की बुक्स हैं हमारे पास, और आपको क्या क्या यहाँ से मिल सकता है, स्पेशल एफर्ट्स librarians usually करते हैं ताकि वो encourage कर पाएँ, motivate कर पाएँ अपने students को appropriate use के लिए. fiction कहाँ पर है, non-fiction कहाँ पर है, हमारे किस किस तरह के fiction है, किस किस तरह के biographies हैं, या हमारे पास special students के लिए क्या है, entertainment के लिए क्या है. तो ये सब चीज़ें जब तक हम उन्हें बताएंगे नहीं तब तक उन्हें नहीं समझ आ जाएगी. तो स्कूल लाइब्रेरीज में ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है कि अपना लाइब्रेरियन स्टूडेंट्स को हर साल थोड़ा थोड़ा अक्वाइंट करते रहें कि हमने ये ऐड किया है नया लाइब्रेरीज़ में, जो है डिक्शनरीज, इंसाइक्लोपीडियाज, जो भी अब सी डी रोम वगैरह में भी अवेलेबल है, डी वी डीज़ में भी अवेलेबल होते थे, ऑनलाइन है, इंटरनेट पे है, ये इन सब चीज़ों के लिए एक्स्ट्रा कंप्यूटर्स रखे जाते हैं लाइब्रेरी में, सो दैट एनी बडी इफ़ यू वॉन्ट टू गो थ्रू, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो आप वहाँ पर बैठ के अपना डाउनलोडिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं. ये सब स्कूल लाइब्रेरीज़ के लिए. कॉलेज लाइब्रेरीज का जो है स्टेप वो ऐसा है कि स्कूल लाइब्रेरीज तक हमारे पास टेक्स्ट बुक से काम चल जाता है. व्हेन यू गो टू कॉलेज देर आर नो मोर टेक्स्ट बुक्स. सो मेन जो आपका पूरा सिलेबस जो है आपका वो लाइब्रेरी पर ही डिपेंड करता है. मेनी टाइम्स मतलब लाइब्रेरी में भी आपका सारा काम वहीं से, आपको फोटोकॉपी करना, बुक्स ले जाना या बुक्स इशू करके ले जाना, फिर अपने नोट्स बनाना, ये सब चीज़ें जो है. तो कॉलेज लाइब्रेरी पे स्टूडेंट्स का जो डिपेंडेंस है इट्स मच मोर देन एनीवेयर एल्स, बिकॉज इन स्कूल्स तो यू कैन गो फॉर एक्स्ट्रा स्टडी, एक्स्ट्रा रीडिंग या एक्स्ट्रा थिंग्स, बट इन कॉलेज लाइब्रेरी यू हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन द बेसिक थिंग्स. कॉलेज क्लास में जो पढ़ाया गया उसके बाद आप कहाँ से ही वो सब इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, कैसे करेंगे, वो सब आपको लाइब्रेरी ही जाना पड़ेगा. और लाइब्रेरी से ही जब तक आपको इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाएंगी कि स्टूडेंट्स को कितने बुक्स इशू होंगे, क्या बुक्स इशू होंगे, क्या हमारे पास नया आया है और किस किस तरह के सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, आईटी रिलेटेड क्या है, और ये सब हम बताते रहते हैं. यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज तो सबसे बड़ी लाइब्रेरीज हैं जिनका सेटअप बहुत ही बड़ा होता है. वहाँ पर आपको जो मैंने एंटिसिपेटरी सर्विसेज के बारे में बात की वो सारी जो है सपोर्ट टीचिंग के लिए, रिसर्च के लिए, ये सब वहाँ पर. लाइब्रेरी लोन, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, एब्स्ट्रैक्ट सर्विस, ये सब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज का काम है ज़्यादातर. हाँ, तो पब्लिक लाइब्रेरीज में आपको यूजुअली पता है कि हमें किस तरह के लोग मिलते हैं, हर तरह के, हर एज ग्रुप में के लोग हैं. तो वी हैव टू बी रेडी फ्रॉम एज ग्रुप 5 to 70 भी 80 भी, जो भी जितने भी लोग होंगे उस तरह से, और डिफरेंट लैंग्वेजेस के भी लोग आएंगे आपको वहाँ पर, उस तरह की आपको तैयारी रखनी पड़ती है. और फिर स्पेशल लाइब्रेरीज में, स्पेशल लाइब्रेरीज आर मेंट फॉर बेसिकली R&D. अगर मेडिकल से लाइब्रेरीज रिलेटेड है तो मेडिकल से ही ज़्यादा होगा, या कभी कभी हमारे पास ब्लाइंड्स के लिए अलग लाइब्रेरीज हैं, पेशेंट्स के लिए अलग है. स्पेशल लाइब्रेरीज में देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स विच इज डिपेंडिंग ऑन अ पर्टिकुलर डिसिप्लिन, पर्टिकुलर सब्जेक्ट. हमारी R&D चल रही है और वहाँ पर ये सब जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज में सारी सर्विसेज दी जाती हैं ये सब स्पेशल लाइब्रेरी में भी होती है, क्योंकि ये लाइब्रेरीज आर मेंट फॉर हायर एजुकेशन बेसिकली. सो दीज लाइब्रेरीज विल प्रोवाइड यू STI कंटेंट, सब इंडेक्सिंग, एब्स्ट्रैक्टिंग, सब कुछ अब ऑनलाइन हो रहा है. पर इतना सारा मटेरियल होने की वजह से वी नीड टू हेल्प आर यूजर्स, आर लर्नर्स, टू गिव देम द पर्टिक्यूलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सो दैट वी आर एबल टू सेव देयर टाइम. दैट्स द मेन मोटिव बिहाइंड ऑल दिस थिंग्स. ये सब हमने सर्विसेज के बारे में बता दिया आपको, डिफरेंट सर्विसेज कहाँ पर कैसे और किस तरह की लाइब्रेरी में कैसे देती हैं. आई होप आपने सब अंडरस्टैंड किया होगा. ये लाइब्रेरी सर्विसेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा चैप्टर है, और बेसिकली जिन्हें लाइब्रेरियन बनना है उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. लाइब्रेरी इज़ बेसिकली सर्विस इंस्टीट्यूशन. आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड. थैंक यू वेरी मच.